syukur jalana. Bobi jangkur jalana, raga daksa mupayasya, bandhava vishnava, harodhinava namastasmi. जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी, गुरु है हितैषी, शुद्धात्मा निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल सयानी, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने, पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। जैसा कि मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं, बहुत गौर से जिंदगी को देख रहा हूं, चाहता हूं कि आप भी अपनी जिंदगी को बहुत गौर से देखिएगा। मैंने देखा यहां पर तरह से लोग जीते हैं। एक वे हैं जो बहुत तेजी से भौतिक उपलब्धियों के लिए दौड़ रहे हैं, उन्होंने कंप्यूटर बनाए हैं, उन्होंने अंतरिक्ष में जाने के लिए यान विकसित किए हैं, और दूसरे तरह के लोग भी हैं यहां पर जो बहुत सारे वाह्य क्रियाएं जिन्हें वो धर्म नाम करके करते हैं उसमें लगे हुए हैं। लेकिन जब मैं दोनों तरह के लोगों को देखता हूं तो लगता है कि उनके पास जिस चीज को पाने के लिए उन्होंने ये सब किया वो चीज क्या नहीं है। जिस चीज को पाने के लिए हम चले और वो चीज न मिले और बाकी सारी चीजें इकट्ठी हो जाए तो फिर उस हमारी खोज का अर्थ क्या हुआ। हमने पहले बैलगाड़ी से यात्रा की, हम आज अंतरिक्ष में यान से यात्रा करते हैं, पर क्रोध मान माया अहंकार ये सारी चीजें तो हमारी जैसी हम बैलगाड़ी में बैठ करके करते थे वैसे यान में बैठ करके भी कर रहे हैं। फिर आखिर हमने पाया क्या? कैसा तो लगता है ऐसा सोचने से कि कुछ भी तो नहीं पाया। फिर हम पहले कभी भगवान के पास भी नहीं जाते थे, फिर हमने भगवान के पास जाना शुरू किया, उनकी एक मूर्ति थी हमने हजारों मूर्तियां निर्मित की। हमारे पास पहले एक मंदिर हुआ करता था, वो कहीं भीतर बनता था, फिर हमने कहा कि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, एक मंदिर बाहर बनाया, हमने पूजाएं शुरू की, पूजाओं को पहले हम ऐसे ही पढ़ लेते थे, फिर हमने गाकर के पूजाएं पढ़ना शुरू की, फिर हमने कितना कुछ तो उस मंदिर में करना शुरू किया, लेकिन इसके बाद भी हम उतने ही लड़ाकू, हम उतने ही कशावान, हम उतने ही लिपसावान बने रहे। तो फिर हमने ऐसा करके भी कुछ नहीं पाया, जीवन का आनंद नहीं मिला, और दो तरह के लोग दोनों तरह की दौड़ में शामिल हो गए। असल में जब जीवंतता खत्म हो जाती है और क्रिया शेष रह जाती है वो पूरी क्रिया यांत्रिक होती है। हमने जो चीजें अपने आत्मविकास के लिए भौतिक रूप से उपलब्ध की थी, हम उन भौतिक चीजों के पीछे खुद भौतिक पदार्थ की तरह यांत्रिक जीवन जीने लगे। हमने जिन चीजों को अपने आत्मविकास के लिए बनाया था, जिस पूजा पाठ की प्रक्रिया को हमने अपने आत्मा के निकट आने के लिए बनाया था, अपने से जुड़ने के लिए बनाया था, उसने हमें अपने से दूर रखा और हम निरंतर एक बाह्य यांत्रिकता से जुड़ गए हैं। अगर मैं कहीं चूक जाऊं, संभाल लीजिए, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, पर मैंने जैसा देखा, आज व्यक्ति सुबह से शाम तक भी सारी धार्मिक क्रियाएं करने के बाद भी उतना ही व्यथित और उतना ही पीड़ित है जितना कि दूसरी तरफ अंतरिक्ष से लौट करके सारे सुख सुविधा के साधन जुटा लेने के बाद व्यक्ति पीड़ित है, अनाश्वस्त है, निश्चिंत नहीं है। कहीं कोई चीज है जो उसे पानी थी, उससे वो विमुख हो गया है और उन सब से जुड़ गया है जिससे उसे नहीं जुड़ना चाहिए था। बहुत पहले जब भगवान महावीर स्वामी हुए, उस समय भी शायद ऐसे ही सब कुछ रहा होगा। उसी समय में उनके समकालीन बुद्ध भी हुए। कहते हैं कि जब बुद्ध पैदा हुए तो ज्योतिषियों से पूछा गया कि ये क्या बनेगा मेरा बेटा। उन्होंने कहा कि सुनो, सावधान रहना, अगर इसकी आंख खुल गई तो ये घर छोड़ देगा, विरक्त हो जाएगा। घबराए माता पिता। अगर किसी माता पिता को बेटा पैदा हो और कोई ज्योतिषी कह दे कि विरक्त हो जाएगा, आंख खुल जाएगी, अब आंख तो खुलेगी, अंधा थोड़ी पैदा हुआ है, बड़े मुश्किल में है। तो ज्योतिषी ने कहा कि ये वाली आंख की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंख पूरा नहीं देख पाती है, इसकी अगर भीतर की आंख खुल गई तो ये विरक्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतजाम क्या है कि आंख ना खुले, देखो तो। कैसा इंतजाम कर लिया? इंतजाम क्या है? आध्यात्मिक अंधापन बना रहे इसका इंतजाम कर लो। हमने भी ऐसा ही इंतजाम किया। हमने अपने साथ, हमारे माता पिता ने अपने हमारे साथ और हमने अपने बच्चों के साथ, जैसा कि बुद्ध के पिता ने शुद्धोधन ने किया होगा सिद्धार्थ के साथ। उपाय पूछा था कि विरक्त ना हो पाए। हम आशक्ति का उपाय पूछते हैं, होना विरक्त चाहते हैं। बता दिया उपाय कि बहुत सरल सा उपाय है, इस बेटे को कहीं कोई पीड़ा दिखाई ना पड़े, इस बेटे को कहीं कोई मरण वो व्यक्ति दिखाई ना पड़े, और इस बेटे को जरा भी समय न मिले अपने बाबत विचार करने का। अगर ये तीन चीजें ऐसे मिल गई तो इसकी आंख खुल जाएगी, और आंख खुल गई तो ये घर छोड़ देगा। जब बेटा पैदा होता है तो उसकी आंख खुली रहती है, लेकिन फिर हम उसे सिखाते हैं कि खुली आंख से भी कैसे मुदे मुदे देखना, वास्तविकता को नहीं देखना, मरघट में ले जाते उसको, क्योंकि वो देख लेगा किसी को मरते हुए तो शायद घर छोड़ देगा। और हम उसे इतना व्यस्त रखते हैं, हर तरह की दौड़ में बचपन से शामिल कर देते कि दौड़ो बेटे, संसार में सब कुछ है जो पाया जा सकता है, संसार से पृथक कुछ नहीं है, जिसे पाना तुम्हारे जीवन की सार्थकता है। ये हम अपने बेटे को कभी नहीं, होगी कोई मां कुंद कुंद स्वामी की जो बेटे को लोरी सुनाती होगी कि शुद्धो सी बुद्धो सी निरंजनो सी, तुम शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव को लेकर पैदा हुए हो, इस संसार में ज्यादा नहीं भटकना। लेकिन सिद्धार्थ के पिता ने तो शुद्धोचन के साथ ऐसा नहीं किया, और ऐसी व्यवस्था कर दी गई कि एक मुरझाया हुआ फूल भी बुद्ध के निकट ना पहुंचे, कोई वृद्ध व्यक्ति उसकी सेवा में न रहे, युवा से युवा लोक सेवा में रहें, और इतना राग रंग, इतना नशा, इतनी शराब उसके चारों तरफ बिखेर दी कि अपने बारे सोचने का मौका ना मिले। तीनों इंतजाम इतने इतने बढ़िया किए गए थे, हमने भी तो अपने चारों तरफ यही तीन इंतजाम करके रखे हैं। हम दुख देख तो लेते हैं, लेकिन हम पर आएगा इसके लिए हम अंधे हैं। हम किसी को मरते तो देख लेते हैं, लेकिन हम मरेंगे इस बाबत हम अंधे हैं। हमने आंख इस बाबत बिल्कुल नहीं खोली है, और हमारे पास इतनी व्यस्तता है काम की कि अपने बाबत सोचने का कहां वक्त मिलता है। और तीनों व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, पर ध्यान रखना जिसकी आंख खुली है उसे कितने भी उपाय करो खुली जाती है। और एक दिन कहते हैं कि युवाओं की सभा में जाने के लिए बुद्ध निकले रथ पर सवार होकर के। सारी व्यवस्थाएं रास्ते में कर दी गई थी कि कहीं कोई मरा हुआ व्यक्ति दिखाई ना पड़े, कहीं कोई वृद्ध दुखी व्यक्ति दिखाई ना पड़े, और रथ में भी इतना व्यस्त रहे कि सोचने का मौका ना मिले। गाड़ियों में वीडियो फिट है, गाड़ियों में संगीत फिट है, जरा भी अपने बाबत में सोचना, बस ये सुनते रहो, टाइम पास हो जाएगा। पहले हमने टाइम सेव करने के लिए बहुत कोशिश की, और फिर बाद में उस टाइम को कैसे कंज्यूम करें इसके लिए उपाय ढूंढे मनोरंजन के। पहले कैसे सेव करें टाइम, हमने इतनी फास्ट कर दी लाइफ कि आप जहां बैलगाड़ी से 6 महीने में पहुंच सकते थे, हम आपको 6 मिनट में पहुंचा सकते हैं। और फिर उसके बाद जो टाइम बचा उसको क्या करेंगे, उसको फुलफिल करने के लिए हमने बहुत सारी चीजें ढूंढ ली। अपने चारों तरफ हम इस तरह से करते चले जा रहे हैं, और बुद्ध का रथ बढ़ता चला जा रहा था, हमारे जीवन का भी रथ तो बढ़ता चला जा रहा, लेकिन इस कहानी में तो बुद्ध का रथ रुक जाएगा। बुद्ध का रथ भले ही चलता रहेगा, लेकिन बुद्ध रुक जाएंगे, पर हमारा जीवन का रथ तो ऐसे ही पता नहीं किन किन गलियों और किन किन रास्तों से चलता चला जाएगा, और कभी शायद हम नहीं रुक पाएंगे। रथ भले ही रुक जाएगा, जीवन की सांस भले ही रुक जाएगी, लेकिन शायद हमारा जीवन हम अपने हाथ से रोक नहीं पाएंगे कि बस मैंने ठीक ठीक से जी लिया, अब मुझे फिर से इस तरह जीने की आवश्यकता नहीं है। एक बार काश हम इस जीवन को जीने का ठीक ठीक कोई ढंग इजाद कर लेते, एक बार ठीक से इस जीवन को जी लेते, तो बार बार काय को जीने के लिए आना पड़ता। ये हमारी कोशिश इस जीवन में यही होनी चाहिए कि इस जीवन को बहुत ढंग से जिएंगे, इसको जरा भी व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और कहते हैं कि बहुत व्यवस्था करने के बाद भी एक बूढ़ा जर्जर व्यक्ति वहां से निकला। बुद्ध ने पहली बार देखा था, 20 साल के युवा ने पहली बार किसी को ऐसे जर्जरित देह में देखा था। बहुत स्वाभाविक प्रश्न था, ये कौन है सारथी, ये कौन है? उसने कहा, मनुष्य है। ऐसा भी होता है मनुष्य? हां, ऐसा भी होता है मनुष्य। क्या हर मनुष्य ऐसा हो जाता है? हां राजकुमार, अंततः हर मनुष्य ऐसा हो जाता है। ठहरो सारथी, एक प्रश्न का जवाब और दो, क्या मैं भी ऐसा हो जाऊंगा? बहुत मुश्किल प्रश्न था, ये कोई नहीं पूछता, सब हो जाएंगे, लेकिन क्या मैं भी हो जाऊंगा? हां राजकुमार, आप इसके अपवाद नहीं है, आपको भी होना पड़ेगा। कहते हैं कि रथ चलता रहा, अपने में, और थोड़ा समय बीता कि अचानक एक अर्थी दिखाई पड़ी जिस पर व्यक्ति की मृत देह लिपटी हुई थी। बहुत आश्चर्य हुआ बुद्ध को, उन्होंने कहा कि अब ये कौन है? उसने कहा, मनुष्य है। मनुष्य को ऐसा भी हो जाना पड़ता है?
कि चार लोग उसे लेकर के जाए। हां, ऐसा भी हो जाना पड़ता है कि चार लोग उसे लेकर, क्या हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है? हां, हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। लेकिन मैं सारथी तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या मुझे भी ऐसा ही होना पड़ेगा? अब क्या कहें सारथी, राजकुमार से ऐसा कहे, 20 वर्ष के राजकुमार से, अगर आपका बेटा कभी पूछ ले आपसे कि आज मैं यह करते निकलते देखी पिता, कैसी अर्थी मेरी भी निकलेगी, आप कहेंगे समय के बोला कर, ऐसी बेकार नाक बातें मत किया कर। आप उसको वास्तविकता नहीं बताएंगे। सारथी था वो बुद्ध का सारथी था, वो बुद्ध के रथ का सारथ कर रहा था। उसने कहा कि राजकुमार, ऐसा ही एक दिन आपको भी गुजरना पड़ेगा। कहते हैं कि बुद्ध उसी क्षण अपने में रुक गए, और जब रथ वापिस घर पहुंचा तो सारे ऐशो आराम के बीच भी बुद्ध अपने कमरे के एक छोर से दूसरे छोर पर टहलते रहते थे। सारा वैभव पड़ा हुआ था, लेकिन इसके बाद भी वो अपने बाबत सोचते रहते थे। और एक दिन कहते हैं कि उन्होंने घर छोड़ दिया था। इसलिए छोड़ दिया था कि उन्हें मालूम पड़ गया था कि मेरा नहीं है। पता नहीं हमें कब मालूम पड़ेगा कि जो कुछ हमने अपना मान रखा है बाहर, वो हमारा नहीं है। कोई और छुड़ाए चाहे ना छुड़ाए, एक दिन आकर के मौत तो हमको उससे छुड़ाई लेगी। फिर हम अपने पिता से नहीं कह पाएगा बेटा कि, वरना पिता कह पाएगा कि तू मेरी आज्ञा से सब काम करता था, तू मेरी आज्ञा के बिना जा कैसे रहा है? सब जगह पिता की आज्ञा चल सकती है बेटे पर, लेकिन मृत्यु के आने पर तो पिता की आज्ञा भी नहीं चलती बेटे पर कि ऐसे कैसे जा रहा, मेरे से बिना पूछे क्यों जा रहा है? और एक दिन इससे पहले कि ये आए, ये जो तीन चीजें हमने अपने चारों तरफ कर रखी हैं, कि हम किसी को दुखी देख करके दुखी नहीं हो पाते हैं, किसी को मरा हुआ देख करके मर नहीं पाते हैं, अपने जीवन को इतना अधिक व्यस्त रखने के बाद अपने बाबत सोच नहीं पाते हैं, काश हम ये तीन व्यवस्थाएं तोड़ देते हैं, इन तीन व्यवस्थाओं से बाहर निकल करके इन तीनों व्यवस्थाओं को बाहर से खड़े होकर देखते कि अरे, ये किसी ने मेरे चारों तरफ इकट्ठी नहीं की है, मैंने खुद अपने चारों तरफ ये व्यवस्थाएं इकट्ठी करके रखी है, और मैं खुद उलझ गया हूं। मैंने अपनी पूरी एनर्जी को इस चीज में कंज्यूम कर दिया है। एनर्जी तो एनर्जी है, आप उसका जैसा यूज करें, प्रॉपर यूज करें, वो कंस्ट्रक्टिव हो सकती है। आप इस तरह वेस्ट करें तो वो वेस्ट हो सकती है, वो पूरे जीवन को नष्ट भी कर सकती है। हमारी पूरी ऊर्जा, जो जीवन ऊर्जा, जो वीटल पावर, जो जीवनी शक्ति हमें मिली थी, हम बहुत गौर से देखें। मैं आपसे बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आपने अपनी जीवन ऊर्जा बर्बाद कर दी है, नहीं, आप खुद देखें कि कहीं बर्बाद तो नहीं कर दी है, कहीं हमने उसे डिस्ट्रक्शन में तो नहीं लगा दिया है, दूसरे के डिस्ट्रक्शन में नहीं। दूसरे को तो आप मार ही नहीं सकते, दूसरे को मार करके अपने को जरूर मार लेते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने ही हाथों अपने लिए कफन बुनना शुरू कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं हमने अपने हाथों अपनी अर्थी तैयार करना शुरू कर दिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने जीवन को हमने अपने हाथों नष्ट करना शुरू कर दिया हो। गौर से देखिएगा, मैंने आपसे कहा था कि पिछले वर्षों से मैं लगातार अपने जीवन को बहुत गौर से देख रहा हूं, कभी कभी बहुत घबरा जाता हूं जिस तरह जीता हूं, जिस तरह मुझे जीना पड़ता है उससे। आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके जैसे घबरा जाता हूं, जब अपने आप से चूकता हूं तब घबरा जाता हूं। आप तो अपने से निरंतर चूकते हो, घबराते नहीं है। थोड़ा सा डरिएगा, थोड़ा सा भय करिएगा कि कहीं एक सांस जो कि मेरे अनजाने में और व्यर्थ चली गई, वो मैं वापिस नहीं लौटा पाऊंगा। कहीं मेरे पास एक थोड़ा सा समय है अपने बाबत सोचने का, इतना थोड़ा सा समय अपने बाबत सोचने का तो आप निकालिएगा और अपनी पूरी जीवन की ऊर्जा को रूपांतरित करिएगा। ऐसे रूपांतरित करिएगा कि जीवन समृद्ध हो, ऐसे रूपांतरित करिएगा कि जीवन किसी का नष्ट ना हो। अपना तो नष्ट होगा ही नहीं, जो दूसरे के जीवन को नष्ट नहीं करता उसका जीवन कभी नष्ट नहीं होता, और जो जितना बाहर किसी और को नष्ट करने में लगा है वो उतना ही अधिक अपने भीतर अपने को नष्ट करने में लगा। एक और घटना उसी समय जो घटित हुई थी मुझे याद आती है, आपको सुना दूं। बस आज मेरे ख्याल से इतना ही पर्याप्त होगा। आप कभी पर्याप्त तो कह ही नहीं सकेंगे, ये मैं जानता हूं। आप थोड़ी सी आदत बदल लीजिएगा, कभी तो कहिएगा, मेरे जाने से पहले तो एक बार जरूर कह दीजिएगा कि बस बहुत हुआ, अपने सुनूंगा, किसी को नहीं सुनूंगा, आपको भी नहीं सुनूंगा, अब तो मैं करूंगा, कुछ करूंगा अपने जीवन के लिए। मेरे जाने से पहले इतना तो जरूर कहिए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं भी कहिएगा तब भी अच्छा लगेगा, बुरा तो मान ही नहीं सकता, कैसे मान सकता हूं। पर हां, थोड़ा सा भीतर में अपनी कमी का एहसास जरूर करूंगा कि शायद मैं ही कहीं कम रह गया, मेरी वाणी और मेरा जीवन किसी को संदेश नहीं दे पाया, जीवन को रूपांतरित करने का संदेश नहीं दे पाया। कर लीजिएगा, समय रहते कर लीजिएगा, अपनी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव कर लीजिएगा, कहीं भी कोई दिखे वहां उसको रचनात्मक कार्य में लगाइएगा। कोई पत्थर भी फेंक करके मारे तो उसमें से उसे भगवान की प्रतिमा उकेर करके भेंट कर दीजिएगा कि आपने कितनी प्यारी चीज दी थी, इसमें तो भगवान छुपा हुआ था। क्या ऐसा एटीट्यूड हमारे भीतर आएगा, इतना पॉजिटिव अप्रोच? हम तो अच्छी बातों में से भी कोई बुरी बात निकाल लेते हैं। जीवन को अपने आप पतित मत करिएगा, अपने जीवन को अपने हाथों पतित करना बहुत अच्छी बात नहीं है, सबसे बुरी बात। किसी और से क्या पूछने जा रहे हैं कि किसने मेरे जीवन को पतित किया है? कभी शाम को थोड़ा सा समय निकाल के अपने से पूछिएगा कि मैंने अपने जीवन को कितना पतित कर दिया है। मैं बना सकता था पावन, मरते समय शायद मरने की पीड़ा नहीं होती, पीड़ा तो इस बात की हो सकती होती है कि मैं ठीक से जी सकता था और ठीक से नहीं जी सकूं, और आज मरण निकट है। मृत्यु तो मरने से पहले इंतजाम कर देती है, आदमी को बेहोश कर देती है, उसको मरने की पीड़ा थोड़ी होती है, ठीक से नहीं जी पाने की पीड़ा बहुत होती है। थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा। वो उदाहरण जो एनर्जी को कन्वर्ट करने का था, मैं आपसे कहूं, आपने सुना होगा नाम बुद्ध के समय में अंगुलीमाल का नाम सुना होगा। एक ऐसा क्रूर व्यक्ति हुआ जो किसी को मारता नहीं था लेकिन बिना मारे मार देता था। कैसे? वो उसके रास्ते से जो भी निकलता था उसे पकड़ लेता था और उसकी दसों उंगलियां निकाल लेता था और उंगलियों की एक माला बना के अपने गले में पहनता था। अंगुली माल उसका नाम रख दिया गया था। लोग बहुत भयभीत रहते थे, किसी को अकर्मण्य बना देना कि उसको पूरा मार देना है, किसी के हाथ छीन लेना ये तो मृत्यु ही है। तो एक दिन कहते हैं कि बुद्ध भी उस रास्ते से गुजरे, लोगों ने मना किया कि मत जाइए, वहां गुलीमाल रहता है। उन्होंने कहा तब तो जाना बहुत जरूरी है, देखो तो कैसे लोग हुए हैं जिन्हें अपने ऊपर इतना विश्वास है कि अगर उन्हें अपने जीवन को बनाया है तो उनके जीवन से लोग अपने जीवन को बनाने की शिक्षा जरूर लेंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति मारने वाला रास्ते से निकलता है और ये दहशत, ये टेरर क्रिएट करके रखता है कि मैं सबको मार सकता हूं,
आज ऐसा कोई सड़क पर से नहीं निकल सकता, कोई तो नहीं निकलता जिससे लोगों को एहसास हो कि ये मुझे जीवन की कोई विधा देगा, जीवन जीने का कोई उपाय देगा। एक दहशत है व्यक्ति को व्यक्ति से कि एक व्यक्ति मेरे को नष्ट ना कर सके। जो व्यक्ति अपने को नष्ट करने में लगा है वो हमेशा दूसरे से भयभीत है कि कोई मुझे नष्ट ना कर दे, और जो व्यक्ति अपने को बनाने में लगा हुआ है वो व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता कि कोई उसे नष्ट कर दे। कोई नष्ट कर ही नहीं सकता। मैंने बहुत पहले एक बहुत छोटी सी चार लाइनें लिखी थी, याद आ गई। सिलवानी में मैं 12 दिन रहा, वहां इसको लिखा था। कोई भी कविता मुझे याद है कि मैंने 3 क्षणों में लिखी है। लिखने के लिए नहीं लिखी, जीने के लिए जरूर जो कुछ भी लिख गया वो लिख दिया है। वहां पर एक मकान बनता था। एक दिन बहुत जोर से आवाज आने लगी तो मैंने लोगों से कहा कि क्या हो रहा है। लोग बोले कि मकान बन रहा है, आप जब से आए हैं तब से बन रहा है। मैंने कहा नहीं, आज आवाज बहुत आ रही है। लोगों ने कहा देख के आते हैं। देख के लौटे, बोले कुछ नहीं, आज वो थोड़ी एक दीवार टेढ़ी हो गई थी तो तोड़ रहे हैं। मैंने बहुत छोटी सी 4 लाइनें लिखी थी, शायद आपको कोई संदेश दें कि बनता चुपचाप है। अभी तक बन रहा था, कोई आवाज नहीं आई। बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। बनता चुपचाप है, टूटता आवाज के साथ है। जिंदगी के दौर में जाने क्यों अब आवाज ही आवाज। कहीं कोई अपने में शांत, कहीं कोई अपने में चुपचाप गुमसुम बैठा हुआ नहीं है, क्योंकि जब भी हम बनाएंगे अपने को, हम अपने आप शांत हो जाएंगे। शांति का बड़े से बड़ा उपाय है कि अपने को बनाना शुरू कर दीजिए। अपने को मिटाइए मत। अंगुलीमाल के रास्ते से जब बुद्ध गुजरे तो उसने आवाज दी कि ठहरो श्रमण, कोई इस रास्ते से ऐसे थोड़ी जा सकता है। बुद्ध तो ठहरने के लिए ही आए थे। जो ठहरा हो उसे किसी के सामने ठहरने में ज्यादा मुश्किल नहीं होती, और जो भाग रहा हो वो तो सोचता है कि ये मुझे रोक करके मेरे से आगे तो नहीं निकल जाएगा। बुद्ध रुक गए। उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो अंगुलीमाल? अंगुलीमाल को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी मेरी आवाज से भागा नहीं, और लोग तो जो निकलते हैं आवाज देता हूं तो बहुत भाग जाते हैं, मुझे दौड़ के पकड़ना पड़ता, ये तो ठहर गया। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते श्रमण, मैं अंगुलीमाल हूं। बोले इसीलिए तो आया हूं, जानता हूं। जानते हो, फिर आए हो। हाँ, क्या चाहते हो? बोले मैं सबकी उंगलियां ले लेता हूं, तुम्हारी तो जरूर लूंगा श्रमण, तुम्हारे हाथ कितने मृदु हैं। जो हाथ अपने जीवन को बनाने में लगे होंगे वे हाथ बहुत मृदु होंगे, जो हाथ अपने को तोड़ने में लगे होंगे वे हाथ ही बहुत कड़े हो गए होंगे। आप आज शाम जाकर के इतना तो कर ही लीजिए, थोड़ा छू के देखिए। किसी छोटे से बेटे के हाथ से, जिस हाथ से उसने मुझे और हम सबको एक किताब दी है, वे उसके हाथ कैसे थे और थोड़े बड़े होने के बाद कैसे हो जाते हैं, ये बात जुदी है कि वो शरीर का धर्म है, कि बहुत प्रतीकात्मक है। कहीं ऐसा कड़ापन हमारे भीतर तो नहीं आ गया? और कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि ले लो, मैं तो आया ही हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि मेरी उंगलियां वो ले जो कि बहुत ताकतवर हो। मुझे ये दुख रह जाएगा कि किसी कायर आदमी ने मेरी उंगलियां ली। अंगुलीमाल ने कहा कि श्रमण हो तो बहुत चालाक, मेरी परीक्षा लेना चाहते हो? बोले नहीं अंगुलीमाल, मैं तुम्हारी परीक्षा नहीं लेना चाहता, मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत सशक्त हाथों के द्वारा मरण को प्राप्त हुआ, मुझे मरने का भय नहीं है, लेकिन कायर हाथों के द्वारा मरने का भय है। अंगुलीमाल एक काम करोगे? बताओ श्रमण क्या करना है? ऐसा करो कि वो जो सामने पेड़ लगा है उसे दो पत्तियां तो तोड़ के लाओ। अंगुली मार को क्या मुश्किल था, वो तो एक छोटा सा बालक भी तोड़ सकता है, लेकिन बालक को देर लगेगी तोड़ने में। अंगुली मार तो बहुत जल्दी तोड़ के लाया। उसने कहा, ये है बुद्ध शमन दो पत्तियां। बहुत बलवान हो अंगुली मार तुम, लेकिन थोड़ा सा काम और शेष रह गया। तुम बलवान तो हो पर पूरे बलवान नहीं हो। बस इतना और करो कि जाओ अंगुली मार, वापस ये पत्तियां उसी पोल पर द्यों की त्यों लगा करके आ जाओ। मैं मान लूंगा कि तुम बहुत बलवान। अब तो अंगुली मार सब पका गया। बुद्ध ने कहा कि अगर नहीं कर पाओ तो कहो कि नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे दुख रहेगा कि बहुत कायर आदमी के हाथ से। अब तो अंगुली मार और सख्ती में आ गया। उसने कहा, मुझे बताओ बलवान होने का रास्ता क्या है, ये दो पत्तियां जोड़ने का रास्ता क्या है। बुद्ध ने कहा, जोड़ने का रास्ता? अपने को अपने से जोड़ने का रास्ता पूछना चाहते हो? आओ मेरे साथ।
वो पत्तों पर खड़े थे, वो धीरे धीरे उतर करके अंगुली मार के चारों तरफ इकट्ठे होने लगे। अंगुली मार को बेहोश था, वो नहीं देख पा रहा था कि जो लोग उस पर पत्थर फेंक रहे थे, जो लोग थूक रहे थे, जो लोग गालियां दे रहे थे, वो उसके चारों तरफ इकट्ठे हैं। बुद्ध ने उसे हिलाया, उसकी चेतना लौटी। बुद्ध ने कहा, उठो अंगुली मार, अब तुम बहुत बलवान हो गए। अंगुली मार, देखो तो आंखें खोल करके देखो कितने बलवान हो गए। अंगुली मार ने सचमुच भरी भरी आंखों से देखा। कभी किसी को भरी आंखों से देखिएगा, सूनी आंखों से मत देखिए दुनिया को, बहुत भरी आंखों से देखिएगा। अंगुली मार ने जब भरी आंखों से देखा तो चारों तरफ लोग खड़े हुए थे, वो अंगुली मार को संभालना चाह रहे थे। बुद्ध ने कहा कि अंगुली मार, तुमने जोड़ना सीख लिया है, देखो तो सब तुमसे जुड़ने को उत्सुक है। तुम अपने भीतर कहीं जुड़ने की विद्या पा गए हो अंगुली मार, इसलिए सब तुमसे जुड़ने को उत्सुक है। तुम्हें यही तो पाना था ना, तुमने अपने पूरे जीवन की ऊर्जा को अपने से जोड़ लिया। काश वो कहानी फिर से आज घटित होती कि हम अपनी चेतना को अपने से जोड़ लेते। इतना समय हमें अपने पास अपने से जोड़ने के लिए मिल जाता और प्राणी मात्र से हम जुड़ जाते तो शायद हमारा ये जीवन बहुत शांत और बहुत पवित्र होता। इतना तो काम करना है इस जीवन में कि बहुत शांत और बहुत पवित्र जीवन जीना है, और इतना ही तो रास्ता है कि थोड़ा सा समय अपने को अपने से जोड़ने का, अपने को प्राणी मात्र से जोड़ने का हमें निकाल लेना है। जैसे बने भैया वैसे ये काम इस जीवन में जरूर कर लेना। मैं ऐसी आशा के साथ, मैं ऐसी भावना के साथ आज आपके साथ नमोकार करता हूं। आप मेरे साथ करते थे कल तक, आज मैं आपके साथ नमोकार कर रहा हूं। पता नहीं इस पंडाल के नीचे बैठ करके फिर अपन कब नमोकार करेंगे, पता नहीं जीवन में कहां कहां इस तरह एक साथ बैठ करके हम भगवान का नाम लेंगे। आज एक क्षण मिला है तो पूरी चेतना के साथ, पूरी भावना के साथ, पूरी आत्मीयता के साथ, पूरे भर करके, अपने से जुड़ करके एक बार नमोकार से जुड़ने की कोशिश करिए। मेरे साथ नमोकार करिए।
उसके हाथ में तुलिका भी हो, रंग भी हो, तो वो क्या करता है? वो जैसे तैसे कोई चित्र बनाता है, और फिर जब उससे पूछा जाता है कि काहे का चित्र बनाया है, तो कहता है कि चिड़िया का बनाया है, बिल्ली का बनाया है। हालांकि वो देखने से कहीं से चिड़िया या बिल्ली नहीं मालूम पड़ती, लेकिन वो पेड़ है तो मानना पड़ता है कि चिड़िया का बनाया है। तो जैसे तैसे, और जब वो धीरे धीरे थोड़ा समझदार हो जाता है, उसका हाथ सूख जाता है, तो सचमुच वो बहुत अच्छा चित्र बनाने लगता है। एक बालक तो प्रयास करके एक अच्छा सा चित्र बना लेता है कैनवास पर, लेकिन हम तो, हमारे हाथ में कितनी बार ये कैनवास आया, कितनी बार तुलिका हमारे हाथ में दी गई, जब जब भी जन्म हुआ तब तब हमारे हाथ में एक कैनवास और एक तुलिका तो दी गई थी कि बनाओ, जैसा बनाना है अपनी जिंदगी का चित्र वैसा बना लो, लेकिन हम हर बार चूकते रहे। आज किसी के जन्म ने हमें एक बार सोचने के लिए फिर से मजबूर किया है कि क्या हम अपना जीवन का कोई ऐसा चित्र बना पाएंगे जो कि सर्वमान्य हो, जिससे कि लोग कोई दिशा ले सकें। आज जिसका जन्म हुआ है उसके बारे में तो बहुत सारी बातें हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर पैदा हुए हैं। लेकिन मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जिन्होंने जन्म दिया उनके बाबत नहीं सोचेंगे क्या? शायद कीमती तो वही है, किस माता पिता ने ऐसे तीर्थंकर को जन्म दिया। एक बूंद गिरती है आकाश से, अगर नीम के पेड़ में गिरती है कड़वी हो जाती है, और गन्ने के पेड़ में गिर जाए तो मीठी हो जाती है, और अगर दूध में गिर जाए तो कीचड़ बन जाती है, और अगर बूंद किसी स्वाति नक्षत्र की सीप में गिर जाए मोती हो जाती है। तो स्वाति नक्षत्र की सीप कौन बनेगा? कोई ऐसी आत्मा जो आज किसी तीर्थंकर को पैदा कर सके? कोई भी नहीं है यहां दूर दूर तक। आज तो डॉक्टर इंजीनियर पैदा करने वाली मां हो सकती है, पिता हो सकते हैं, लेकिन आदमी और परमात्मा पैदा करने वाली आत्माओं का यहां से लगभग अभाव हो गया। पर संस्कार तो आज भी दिए जा सकते हैं, ये जन्म कल्याणक। अगर हमें अपने बच्चों को संस्कार देने का कल्याणक मान करके भी हम इससे कोई संदेश लें तो ले सकते हैं। इस मंच से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि कुछ तो जन्म लेने से पहले ही मार दिए जाते हैं, माता पिता के द्वारा मार दिए जाते हैं। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अच्छा है। विज्ञान की गलती नहीं है कि उसने सोनोग्राफी दी है, गलती हमारी है कि हमने उसका दुरुपयोग किया है, और ये पता करके कि आने वाली बिटिया है हमने जरा भी रहम नहीं किया है। भले ही हम अपने को बहुत अहिंसक समाज के लोग मानते हैं, भले ही हम चीटी पर पैर रखने से पहले कांप जाते हैं, लेकिन आने वाले आत्मा को पता नहीं वो किस चीज को लेकर के, किस पुण्य को अर्जित करके आई होगी, या आकर के यहां अपना आत्म कल्याण कर पाएगी। इसके पहले हम उसे जन्म नहीं देने देते हैं क्या? जन्म कल्याणक के दिन हम ऐसे किसी संकल्प से युक्त होंगे क्या? यहां पर भी बहुत सारे लोग बैठे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में एक नहीं दो दो चार चार बार ऐसा किया होगा, करवाया होगा, मजबूरी में किया होगा या अपनी स्वेच्छा से किया होगा। आखिर आदमी इतना मजबूर क्यों है? मैं तो कई बार सोचता हूं, नहीं वो मजबूरी नहीं है, वो उसकी कमजोरी है। एक उदाहरण मेरे सामने है, मैं उदाहरण सुनाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे, क्योंकि बहुत निकट का उदाहरण है। मैं वहीं था, मेरा चतुर्मास था उस जगह पे, तो लिखी, पर मैं क्लियर तो एकदम नहीं होने दूंगा। उस मां को मजबूर किया गया कि क्योंकि पहले से दो बेटियां हैं, तीसरी और आने वाली है, तो वो ना आ पाए। हॉस्पिटल ले जाने की बात कही गई, उसने मना कर दिया कि ऐसा संभव नहीं है। दूसरी बार बाई फोर्स हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो वापस लौट आई। और तीसरी बार तो हॉस्पिटलाइज करने के बाद, ऑपरेशन थिएटर में पहुंचने के बाद, बेहोश की दवाई भी देने के बाद भी सांस रोक करके उसने बेहोश नहीं होने की कोशिश की, और जब तक कि डॉक्टर दूसरे काम में लगे वो वहां से वापस आ गई। और वो बिटिया पैदा हुई और वे सब घर के लोग दंग हैं, दंग होकर के रह गए कि जब वो बिटिया पैदा हुई जिस दिन, उसी दिन सुबह उनका 3 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ। मेरे पास आके प्रणाम किया उन्होंने, तो मैंने उनसे यही कहा कि उसने तो अपना इंतजाम पहले से कर लिया, आप चिंतित थे उसके लिए। आज अगर आप 3 लाख रुपए उसके फिक्स डिपॉजिट में डाल दें तो 20 साल की बिटिया होने पर शायद वो 20 लाख से कम नहीं हो जाएंगे। लेकिन हम पता नहीं क्या सोच करके और सब कुछ मनाते हैं। जन्म का लानक लोग नच रहे थे, ठीक है दूसरे के जन्म पर नचो, लेकिन अपने आने वाले जन्म पर मातम मनाते हैं, तो बड़ा अजीब मालूम पड़ता है। यह सब बड़ा फ्रॉड मालूम पड़ता है, बड़ा धोखा मालूम पड़ता है। दूसरे को नहीं, अपने को ही धोखा देते हैं। भैया सबसे अच्छा तो यह है कि आज जन्म कल्याण पर इतना ही संकल्प ले लो कि हम आने वाले बेटे को ना बना पाएंगे तीर्थंकर, तो कम से कम मुनि तो बना देंगे। तो जन्म लेते तो मां बनना सार्थक हो जाए। देखो तो कि तीर्थंकर को सची उठा करके ले जाती है, सबसे पहले सची ही दर्शन करती है और बालक भगवान को लेकर के जाती, उतने का इतना पुण्य होता है कि अगली बार मोक्ष ही हो जाता है। जन्म लेती है और सौधर्म इंद्र से पहले सची को मोक्ष हो जाता है। काहे की वजह से हो जाता है? बालक भगवान को स्पर्श करने से, बताइएगा। तो बालक भगवान को जन्म देने वाली माँ कितनी उत्कृष्ट हुआ करती होगी। लोग मेरे से बार बार, बहने लोग तो विशेष रूप से कहती हैं कि इस पर्याय से मुक्ति का क्या उपाय है। मैं कहता हूं कम से कम इस पर्याय में आशक्त नहीं होना और तीर्थंकर की मां होने की भावना तो भा करके देखना, देखें क्या होता। मां भी बने तो तीर्थंकर की मां बने। संस्कार देना आज बच्चों को बहुत आवश्यक हो गया है। जिन्हें हम जन्म देते हैं उन्हें हम जन्म के साथ साथ संस्कार भी दें। एक और दमोह की घटना है, मैं तो 2-3 घटनाएं सुनाई देता हूं, शायद आपको कोई उससे संदेश मिले। इतनी बड़ी घटना तो आज जन्म की यहां घटित हुई है, पर वो तो लगता है बहुत पुरानी हो गई, उससे कोई संदेश नहीं। यही रोजमर्रा के जीवन में मैं आपको कहूं ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। एक पिता ने अपनी बिटिया से विवाह होने के बाद कहा था कि सुनो संकोच नहीं करना, जब तुम्हें लगे कि बेटा आ गया है तुम्हारे भीतर तब जरूर मेरे को सूचित कर देना, मैं तुम्हारा पिता हूं। इसलिए सूचित कर दिया बिटिया ने। 15-20 पेज का पत्र लिखते थे वो पिता अपनी बिटिया को कि अब तू ऐसा सोचना, अब तू ऐसा खाना, अब ऐसा व्यवहार करना, ऐसा बोलना। और जब 9 महीने के बाद एक साथ 2 बेटे पैदा हुए तो बड़े बड़े लोगों के कान काटते। मेरे से बोलता था वो 5 साल का बेटा वहां दंगों में कि आप ऐसा लेते हैं हमको मालूम है क्यों लेते हैं, आप ऐसा खाते हैं हमको मालूम है क्यों खाते हैं। वो आज भी हैं दोनों बेटे और बहुत बुद्धिमान है, और पंडित जी को याद आ गई होगी कि वो विद्यार्थी जी के नाती है। और उन्होंने अपनी बिटिया का नाम भी यशस्वती रखा था। हमने तो तीर्थंकरों के और उनकी परंपरा में होने वाले लोगों के नाम रखने, चंटू मंटू पंटू तो रखना शुरू कर दिया, लेकिन कोई आदिनाथ और कोई ऋषभ देव रखना वरना नहीं पा डब्लू नाम रखे। समझ में नहीं, हम तो नाम भी संस्कार को छोड़िएगा, नाम भी हम ऐसे नहीं रख रहे हैं और जन्म कल्याणक मनाने के लिए बैठे हुए हैं। प्लीज थोड़ा सा सोचिएगा, आगे आने वाले लोगों के बारे में सोचिए। एक बिटिया को मेरी बात सुनते सुनते बात लग गई होगी, पनागढ़ की बात है, तो वो शादी होने के बाद मुझे प्रणाम करने आई कि आशीर्वाद दीजिएगा अगर बेटा पैदा हो तो वो मुनि बन जाए। अभी है वो 6 बरस का है और 100 पीछियां थी वहां जबलपुर में, वो सबको देखता था 5 बरस का बेटा, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं। मैं उधर से दूर से आता दिख गया, 9:30 बजे जंगल से लौट रहा था वापस, वो वहीं से मां की गोद में से उतरने के लिए तत्पर हो गया और दौड़ लगा करके मेरे पास पहुंच गया। वो मुझे पहचान जाता है क्योंकि मां ने बचपन से उसे इमेज बनाई है कि तू बनेगा इस तरह का साधु बनना, घर में किसी को डांटने नहीं देते कि ये मुनि बनेगा, ना बन पाएगा मुनि छोड़िए 20 बरस तक तो सच्चा सदग्रस्त तो बन ही जाएगा, ना बन पाएगा मुनि, इतना संस्कार तो डाल ही सकते हैं, लेकिन हम लोग तो आज शादी भी करते हैं तो सिवाय भोग विलास के लिए। लिखा है कि विवाह किया जाता है, आदिनाथ आदि पुराण में पढ़ रहे थे उसमें लिखा विवाह किया जाता है ताकि आने वाली संतान धर्म को आगे बढ़ा सके, इसलिए हम साधु नहीं बन पा रहे हैं, इसलिए विवाह करना पड़ रहा है, मजबूरी में विवाह करना पड़ रहा है, और इसलिए विवाह करना पड़ रहा है कि आगे हम संतान अगर आएगी तो उसे अपना धर्म हैंड ओवर करके चले जाएंगे कि भैया इस धर्म की परंपरा को चलाना, इसके लिए विवाह किया जाता था, व्यसनों की पूर्ति के लिए विवाह नहीं किया जाता था। आज धर्म कल्याण के दिन ये भी सोचने की बात है, और एक बड़ी बात है कि देखो तीर्थंकर का जन्म होता और माता पिता को सूतक पातक नहीं लगता, इसका मतलब है कि कोई अच्छी हैसियत वाला व्यक्ति पैदा हुआ वो आपका धर्म नहीं छीनेगा, और यहां तो बेटा पैदा हो जाए तो पहले क्या देता कि 10 दिन तो बंद और जब कछ हुआ मुझे सो और बंद तुम्हारा धर्म, जो पनिशमेंट जितने पैदा करोगे उतने दिन का धर्म छीनेंगे, और जितनी ज्यादा परंपरा बढ़ती जाएगी उतना सूतक पातक लगता चला जाएगा, और मां का तो और मुश्किल है कि 45 दिन का छीन जाता है। आपको साथ जिसने हमारा धर्म छीन लिया, ऐसे बेटे को पैदा कर रहे हैं, अरे ऐसे बेटे को पैदा करें जो हमारे जीवन का कल्याण करते हुए मां कृष्णा गोद में खिलाती हैं उसी बेटे को और उसी के पैर छूती है कि तू तो मेरा कल्याण करे। काश हम भी ऐसा कुछ आज के दिन सोचते, सोचना ही चाहिए इस जन्म कल्याणक के दिन। आगे तो भगवान हमें संदेश देंगे, आज हमें ये संदेश दे रहे हैं पैदा होकर के कि अपने आत्म कल्याण के लिए अगर कोई कोशिश करनी है तो ऐसे बेटे को जन्म देना जो अपना भी आत्म कल्याण करे और साथ साथ माता पिता का भी के कल्याण में भी सहयोगी बने। बचपन पता नहीं भगवान का कैसे बीतता होगा, हम तो सोच ही नहीं सकते, पंडित जी को दिन भर में बचपन में बिता देंगे और खूब बड़ा कर देंगे और कल जो है कहेंगे कि अब जाओ पालकी में बैठ करके दीक्षा वीक्षा ले लो, ये कई दिन में पंडित जी इतना बड़ा कर देंगे। इधर तो मां लोगों को मालूम है कि कितनी मुश्किल होती है, अब भी कोई उन्होंने लगे तो 10 लोग चिल्लाएंगे अपने बच्चे को संभाल लो नहीं तो बाहर जाओ, तो धर्म करना मुश्किल हो जाता है जब बड़ा करते हैं उसके लिए। पर भगवान का बचपन तो हंसी खुशी बीतता है, सुबह सुबह आज उसमें पढ़ रहे थे तो आया था कि भगवान पैदा हुए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए पैदा हुए, और उनके जीवन में कैसे बचपन बीता होगा एक कवि ने छोटी थोड़ी सी कल्पना की है वो और आपसे कह दूं बस इतनी ही बात। उसमें लिखा हुआ है कि जब वर्धमान महावीर स्वामी बड़े हो गए, थोड़े से बड़े थे, करीब 8-8 बरस के थे, तो त्रिशला के साथ चले जाते थे, त्रिशला घूमने जा रही थी शाम को उपवन में घूमने के लिए, तो वो साथ में थे और अचानक जो है उन्होंने उंगली छोड़ दी मां की और दूर खड़े हो गए। त्रिशला तो अपनी सखियों के साथ में व्यस्त थी तो चली गई, तो आगे बढ़कर हमने देखा कि मां वर्धमान कहां चला गया, पीछे मुड़के देखा तो वो वहीं खड़े हुए थे, तो वापिस लौट के आई और देखा तो आंखों में आंसू थे। वर्धमान तू रो क्यों रहा, तेरे से किसी ने कुछ कहा क्या? बोले नहीं मां, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तुम नन्नी नन्नी घास पर पैर रख के चलती हो ना तो मुझे लगता है जैसे कोई मेरे ऊपर ही पैर रख के चल रहा हूं। देखो ना मां, पूरी पीठ छिल गई है, और मां ने जब उसके वस्त्रों को हटा के देखा तो सचमुच उस पर पीठ पर 2-4 पैर के निशान थे। ऐसा हुआ होगा ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि कितना संवेदनशील होगा वो जीवन जहां की दूसरे के प्राणों की पीड़ा भी अपने जैसी मालूम पड़ती है, ऐसे बीता होगा बचपन, तब तो जाकर के बड़े होकर के प्राणी मात्र के कल्याण और अपने आत्म कल्याण के लिए और इस अहिंसा के लिए वे तैयार हुए होंगे। हम लोग तो अहिंसा की बात कर लेते हैं लेकिन हमारे भीतर की संवेदनशीलता तो धीरे धीरे शून्य होती चली जा रही, हम बच्चों को संवेदनशील होना भी नहीं सिखाते, हम दूसरे के सुख दुख में उनको सहयोगी होना भी नहीं सिखाते हैं, अगर वो मार पीट करते हैं तो भी हम नहीं रोकते हैं। गांधी जी की मां से गांधी जी ने एक बार पहुंच करके कहा कि मां ये बड़ा भैया जो है मुझे बहुत तंग करता, ये लड़के बहुत तंग करते, मुझे मारा है मां इनने, तो मैं अपने काम काम में व्यस्त थी, मैं बोली तो फिर से कहा कि मां तू बड़े भैया को डांट तो देना, ये मुझे बहुत तंग करता है और मुझे बहुत मारा है उसने। तो मैं झुंझला के बोली कि जा तै भी उसको दो चांटे मार के आ जा। तो गए नहीं, उल्टा मां से कहा कि तू मेरी कैसी मां है, उसको मारने वाले को दबाटती नहीं, मुझे मारना सिखाती है, तो कैसी मेरी मां है। ऐसा कोई बेटा पैदा कर लीजिएगा जो आपको भी संदेश दे दे, वैसे संस्कार कितना बहुत सारा पुण्य अर्जित करना पड़ेगा माता पिता को, तीर्थंकर जैसा बेटा पैदा करने के लिए पुण्य अर्जित करिएगा। और इन्हीं अच्छे अच्छे कार्यों से पुण्य अर्जित होता है और भावनाओं से होता है, तो अपनी भावनाओं को अच्छा बनाइएगा और जिससे कि आगे हमारे धर्म की परंपरा आगे आने वाली पीढ़ी से अच्छी तरह से चले। और कम से कम ये इसका तो संकल्प कर ही लीजिएगा कि किसी को भी आने से पहले मत समाप्त कर दीजिएगा। संगी पंचेंद्री है और उसके अंदर भगवान बनने की पूरी क्षमता है, बहनें लोग तो इसके लिए संकल्प ले ही ले सकती हैं, ऐसी स्थिति बनती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि चार चार बेटियां होने के बाद भी खुश होते हैं कि हमारे तो बेटे ही जैसे हैं। पता नहीं बेटा क्या करता है सिवाय शराब और उसके क्या करता, कभी बेटिया ने शराब दी हो तो बंबई बंबई की बेटियां हो सकती है, लेकिन हमने नहीं सुना। लेकिन बेटे को शराब पीते तो हमने हमेशा सुना, किसी का भी हो 80% लोग होंगे यहाँ तो फैमिली में कुचकते हैं यहाँ के लड़के। वक्त मेरे पास आने में तो मैं समझ जाता हूँ कि मेरे पास आने में क्यों डर लग रहा है, कहीं ना कहीं कोई मिसबिहेव होगा, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी होगी, इसलिए तो आ नहीं पाते हैं, दूर रहते हैं कि भाई आप लोग फंसेंगे और क्या हम लेकर के जाए वहां तक। लेकिन माँ पिता को चिंता नहीं है कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, कितने पैसे लेके गए और कहाँ मिटाए हैं उसने, जब हम दे दिया वो निश्चिंत हो गए, तुम जो कचो कहने से करा। तो ऐसे जन्म पहले से मतलब क्या, आपने अपना कर्तव्य कहां पूरा किया, गृह जीवन का कर्तव्य आपने कहां किया, उनको संस्कारित करके उनको कोई अच्छा कुछ बना दें, तब तो मेरे ख्याल से। लोग तो कहते हैं कि मुनि बनने में बहुत सोच समझ की आवश्यकता है, मैं तो कहता हूं कि गृहस्थ बनने से पहले सोच लो कि क्या बन रहा, ब्याह कर रहे से पहले सोच लो कि जो आएगा उसको कुछ दे पाओगे कि ऐसे फोकट में कर रहे। हाँ, आने वाली परंपरा आपके हाथ में है इतनी बड़ी, तो हमें आज संदेश लेना चाहिए। एक और बहुत बढ़िया बात याद आ गई, जब भगवान ने विवाह किया था, आज तो भगवान पैदा हुए हैं, जब ये विवाह करेंगे, क्योंकि इनका विवाह तो बताएंगे नहीं, पंडित जी दीक्षा दिखाएंगे तो जब उनका विवाह बताएंगे शायद अभिषेक दिखाएंगे। हाँ ठीक राजू, तो विवाह हुआ था तो उनसे पूछा गया कि आपको तो मुक्त होना है, आप जानते हो अधिकारी हो, विवाह हुआ क्या कर रहे हो, तो बोलते मैं ये देखना चाहता हूं कि ये भोग बड़े हैं कि मैं बड़ा, ये भोग सामग्री जीतती है कि मैं जीतूंगा इस भोग सामग्री को छोड़ करके, इतना बड़ा संदेश दे करके वो जाते हैं। तो ये सारी चीजें अपन को अपने जीवन में जैसे बने लाने की कोशिश करनी चाहिए। गुरु आचार्य गुरु विद्या सागर मुनि।